भाव दीपिका लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सर्वसाऊ। स्वभाव विभाव परभावको ज्ञाता सम्यक सुपुनि नमो चित्तधरिध्यान। पंडित श्री दीपचंद जी का आशीर्वाद लिखित यह भाव दीपिका नामक ग्रंथ है। इसमें जीव के 5 असाधारण भावों की विस्तार से चर्चा की हुई है। अभी हम यहाँ अनंतानुबंधी दशाएं उनके बारे में हम देख रहे थे। अपना कषाय भाव अंतराधिकार चल रहा है, यानी मूल में कौन सा भाव चल रहा है तो औदयिक भाव। औदयिक भाव में हमने गति औदयिक भाव देखा था, फिर मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार भी देखा था। अब कषाय भाव अंतराधिकार की बात अपनी चल रही है। उसमें हम यहाँ अनंतानुबंधी का स्वरूप हमने देखा था और अनंतानुबंधी लोग वगैरह की बात देखी थी। यहाँ 61 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यानी यहाँ 9 कषायों पर भी बात घटित करके बताया था। देखो, ऐसे ये कहे जय अनंतानुबंधी के स्वरूप प्रकट बुद्धिपूर्वक कार्य रूप भाव। क्या कहा, क्या क्या विशेषण बताए इन भावों को? प्रकट बुद्धिपूर्वक कार्य रूप भाव ते अनंतानुबंधी चारित्र मोह के तीव्र उदय विषय होए है। इन विषय कृष्ण नील कापोत लेशा ही है। अनंतानुबंधी के तीव्रतम ऐसे जो भाव है उनमें अशुभ लेशा है। ये भाव नरक निगोद के कारण है। तातई इन भावनी को प्रकट न होने देना और इनके नाश का उद्यम करना, जाते यह मनुष्य पर्याय पाई है, ताते यहाँ इसके नाश करने के सर्व उपाय मिले हैं। बुद्धिपूर्वक बताए ना, प्रकट बुद्धिपूर्वक सोच समझ कर, तो कहते इसको नहीं होने देना, वो भी सोच समझ कर, नहीं तो होने वाला होता, ऐसा नहीं कहना है कि तो उसके लिए उद्यम करना, इनके नाश का उद्यम करना कह रहे। और वो उद्यम कैसे होगा, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से होगा। और यह मनुष्य पर्याय बिजली के चमत्कारवत क्षणभंगुर है। जैसे बिजली चमकती है, चमत्कार यानी उसका चमकना, ताते ये पर्याय छूटे पीछे इनका उपाय हो ही सकता नहीं। मनुष्य पर्याय में जितना उद्यम यहाँ होगा, वहाँ अन्य पर्याय में उसका उपाय नहीं हो सकता, ये बात यहाँ बता रही है। अरु अनंतानुबंधी के उत्कृष्ट कषाय भाव इस भव विषय, ये एक एक शब्द है, इस भव और पर भव, सर्वत्र अकल्याण के कारण है। क्या कहा, अनंतानुबंधी में जो उत्कृष्ट है, तीव्र भाव जो है, वो अकल्याण का कारण है, जीव का बुरा करने वाला है। कब? तो कहते इस भव में भी और पर भव में। इस भव विषय तो राजा दिखनी करी दंड पावे है, यानी क्रोध मान माया लोग सब ले लेना, उसमें अत्यंत क्रोध से किसी का, दूसरे का तो खून भी कर दे वो, यानी उसको मार दे, हत्या कर दे, या तीव्र लोभ में चोरी करे, इसे तो राजा से भी दंड के योग्य होगा। धन संपदा कुटुंबादिक का वियोग हुए है, स्थान तय भ्रष्ट हुए है, स्थान उसके उच्च पद पर होगा तो वो उसका पद भी भ्रष्ट हो सकता है, और लोक निंद्य हुए है, लोग भी कहेंगे कैसा है ये जीव, लोभी है, मायावी है, मानी है, क्रोधी है, दुखी हुए है, क्योंकि ये दुखी तो अपने कषाय से है, तो जितना तीव्र कषाय उतना अधिक दुखी, अरु आगामी नरक गति और निगोदादि तीर्यंच गति को कारण है, यानी ऐसे तीव्र कषाय रूप उसके इन गतियों का बंद होगा। ताते इनके छोड़ने का उपाय करना, ये उपदेश दे रहे उसके छोड़ने के उपाय, ये जानने का प्रयोजन क्या है, ये क्यों जानना, ये इतने सारे भेद प्रभेद भाव क्यों जानना, तो कहते इनके नाश का यहाँ उपाय कर हो सकता है तो ऐसे उपाय जरूर करना। हाँ, हम 62 नंबर पर आ गए। आपके पास हिंदी है, कौन सी है? हाँ, हिंदी, हिंदी में अनंतानुबंधी की बात अपनी चल रही है, जहाँ अप्रत्याख्यान लिखा है उसके ऊपर का दूसरा पैराग्राफ, अप्रत्याख्यान जहाँ लिखा है, अप्रत्याख्यान कषाय का सामान्य स्वरूप हेडिंग है बीच में पेज में, उसके ऊपर दूसरा पैराग्राफ, अभी वहां से पढ़ेंगे। इस अनंतानुबंधी का वासना काल, देखो वासना काल का अर्थ क्या है, किसी के प्रति क्रोध आया है तो उसके प्रति क्षमा भाव रूप नहीं प्रवर्तन, यानी उसके प्रति उसके जो क्रोध परिणाम उस जीव के प्रति का, यानी उसका क्रोध चल रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि क्रोध मान माया लोग अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटते हैं। वासना काल करते किसी ने किसी का कोई उसके कुछ बोला है, उसका इंसल्ट किया, जो कुछ है, तो उसके प्रति उसको जो क्रोध आया था तो उसके प्रति वो क्षमा भाव रूप नहीं हो रहा, उसको कहेंगे वासना काल। संस्कार इसको संस्कार तो ज्ञान पर्याय पर लगते है, यहाँ तो वासना काल के रूप में उसको कहने की पद्धति, यानी वो जिसके प्रति उसको इतना क्रोध आया है उसके प्रति वो क्षमा रूप नहीं हो रहा। हमने देखा था जीव कांड में, हमने क्रोध मान माया लोभ के चार चार भेद देखे थे, क्रोध के याद है, वो कठिन शैल है, यानी ये वहाँ ऐसा लिखा था पृथ्वी भेद, शिला भेद, शिला भेद, पृथ्वी भेद, जल रेखा, पहले धूली रेखा फिर जल रेखा, वहाँ कैसे था कि बहुत लंबे काल पीछे वो मिट जाता है, बहुत घने काल, ऐसा शब्द है, यानी बहुत घने काल तक वो क्रोध है वो क्षमा रूप नहीं होता। मान के जो चार भेद थे उसमें तीव्र मान को क्या कहा था, वो तो शैल कहा था वहां पर, तो वहां तो कठिनाई है ना, तो नरमाश नहीं है, तो ऐसा मान है कि बहुत लंबे काल गए पीछे भी वो विनय रूप नहीं होता, ऐसा उसमें हर एक में लगाया था हमने, ऐसे यहाँ पर भी समझना है कि इसको वासना काल कहेंगे। तो कितना है, संख्यात असंख्यात अनंत भव पर्यंत चला जाए, भव क्या कहा, अनंत भव तक वो उसका चलेगा, वासना काल चले उस विशिष्ट, तो इतने भव किसी को देखकर क्यों क्रोध आता है, उसने तो कुछ किया नहीं ना, ऐसा भी होता है। तो संख्यात असंख्यात अनंत भव पर्यंत चला जाए है, और हम देखते हैं अभी वो अप्रत्याख्यान में बात आएगी, अप्रत्याख्यान का वासना काल देख लो अभी, छह मास पर्यंत, यानी क्या है, समय दृष्टि के तो अनंत अनुबंधी है ही नहीं है, अप्रत्याख्यान है और उसका वासना काल 6 महीना है, यानी उसको किसी के प्रति क्रोध मान माया लोभ जो कुछ है होता है तो उसका जो क्षमारूप भाव 6 महीने के अंदर हो जाएगा, वो अधिक लंबा चलेगा नहीं उसका, और ये जो मिथ्या दृष्टि ऐसे वो याद कर करके भी उसके प्रति उसका वो क्रोध रूप परिणाम चलता रहेगा। तो देखो अनंतानुबंधि का वासना काल संख्यात असंख्यात अनंत भव पर्यंत चला जाए। एक बार किसी जीव पर किया जो क्रोधाधिक भाव, क्रोधाधिक में क्रोध मान माया लोभ सब ले लेना, सो अनंत काल पर्यंत दुखदायी है। ताते इनके उपजने का कारण घटावना, उसके उपजने का कारण क्या है? इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं ना, और मिथ्या तो भाव पड़ा है। इनके अभाव होने का कारण मिलावना, यानी हो भी गया तो कहते उसका शीघ्र उसका अभाव हो जाए इसका कारण मिलावना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, सुसंगति में रहना कुसंगति में न रहना। क्योंकि कुसंगति में क्या अच्छा क्या ऐसा होना चाहिए, और उसको और उपाय बताएगा कि उसके बदला कैसे लेने का। इनके नाश का प्रथम उपाय तो यह है, पीछे जैसे बने तैसे इनके छोड़ने का उपाय करना। प्रथम उपाय क्या है कि तो उपजे ही नहीं, उपजने के कारण ही घटाना, पहले में पहले यही उपाय कि ऐसा तीव्र परिणाम ही न हो जाए उसके। बहुरी अनंतानुबंधी के मंद उदय में कार्य रहित आप गोचर भाव हो है। पहले क्या कहा था, वो तो तीव्र उदय लिया था, देखो पीछे चारित्रमों के तीव्र विषय में 61 पेज पर नीचे से दूसरे पैराग्राफ में प्रकट बुद्धिपूर्वक कार्य रूप भाव लिखे थे, और यहाँ लिखते हैं मंद उदय में कार्य रहित आप गोचर भाव, यानी उसका बाह्य कार्य कुछ नहीं दिख रहा है, किसी का कुछ किया नहीं उसने, पर उसके मन में तो उसके प्रति क्रोध मान माया लोभ हो गए, किसी वस्तु के प्रति, किसी अन्य मनुष्य के प्रति कहेंगे तो कहते कार्य रहित है परंतु आप गोचर ने अपने को समझ में आवे। तहा छह लेशा पाई है, तीव्र उदय में तीन अशुभ लेशा बताई थी, बुद्धिपूर्वक है यानी सोच समझ कर, यानी वो जानता है और वो कार्य रूप भी प्रवर्तता है, वो तीव्र उदय था। ये मंद उदय है, वो भाव उत्पन्न हुए है उसके समझ में आ रहे हैं, परंतु वैसा बाह्य में उसका कुछ कार्य नहीं हो रहा, किसी के प्रति गुस्सा आया परंतु बाह्य में वैसा कुछ कार्य नहीं हो रहा, उसको बोलना या उसके प्रति उसकी हत्या करना आदि बाहर कुछ नहीं हो रहा है, मंद है उदय, पर इतना ही लेना। इतने तो छह लेशा में ये हो सकता है, ये भाव चारों गति के कारण है। बहुरी अनंतानुबंधी के मंदतर उदय में आपके अगोचर भाव हुए, यानी जिसको हम कहते हैं बुद्धिपूर्वक, यहाँ बुद्धिपूर्वक तो सोच समझ कर को लिए कहा, ऊपर आप गोचर भाव था परंतु कार्य रहित था, यहाँ कहते आपके अगोचर है जिसको हम अबुद्धिपूर्वक कहते, परंतु वो अबुद्धिपूर्वक शब्द यहाँ उन्होंने बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक शब्द यहाँ हम हमेशा जिस अर्थ में लेते उस अर्थ में नहीं लिया है। यहाँ तो आप गोचर यानी जो अपने ख्याल में आवे ऐसे, और आप अगोचर यानी अपने भी ख्याल में नहीं आ रहे कि यहाँ ये भाव उत्पन्न हो रहे, तो मंदतर है, मंदतर उदय। पहले तीव्र कर लिया था क्या, फिर तीव्र लिया होगा, अकेला तीव्र ही लिया, तीव्रतर वाली बात नहीं ली, यानी चार भेद नहीं किए उन्होंने। हाँ ऐसे ये कहे जो हमने पहले देखे थे वो सब तीव्र कहे थे, फिर मंद और मंदतर ऐसे तीन भेद किए हैं। तो कहते मंदतर जो है अगोचर है, अपने के भी समझ में न आवे ऐसे है, वहाँ पीत पद्म और शुक्ल तीन लेशा ही पाई है। जाते मंदतर उदय में द्रव्य सम्यक्त्व और द्रव्य अणुव्रत महाव्रत योग्य हुए हैं, ताते ये भाव मनुष्य देव दो गति को ही कारण है। ये द्रव्य सम्यक्त्व और द्रव्य अणुव्रत महाव्रत, द्रव्य अणुव्रत समझते हैं ना, नहीं समझे। जैसे हम क्या, हम जिसको हम व्यवहार कहते हैं व्यवहार से, परंतु यहाँ व्यवहार नाम नहीं दिया। जैसे हम संयम में कैसे कहते हैं द्रव्ययम और संयम, वैसे यहाँ द्रव्य सम्यक्त्व यानी क्या है, तो यहाँ तो गृहित मिथ्यात्व का त्याग रूप द्रव्य सम्यक्त्व कह सकेंगे हम इसको।
नहीं हुआ,
नहीं हुआ है वही तो,
परंतु सम्यक्त्व के सम्मुख है और उसको मतलब इच्छा तो है कि सम्यक्त्व करने की है, होने की, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। यानी जैसे हम कहेंगे कि अन्य अन्य की अभक्ष्य का सेवन नहीं करना या अष्टम गुण का धारक है, ऐसा जो जीव है वो द्रव्य सम्यक्त्व उसका कहेंगे, प्रोवाइडेड ही गिव्स भाव सम्यक्त्व इन फ्यूचर।
अभी ये अनंतानुबंधी है नहीं, मिथ्या दृष्टि ये तो नक्की है
हाँ।
और द्रव्य सम्यक पे नहीं, वो तो गृहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, यानी उसने गृहित मिथ्यात्व का त्याग किया हुआ है, इतना तो ले सकते हम। और देवगति के कारण भूत ऐसे, यानी जैसे आप अभी आपने बताया हाँ? यह तत्व का अभ्यास हुए परंतु अभी समय दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, मंदलेश। और ये बुद्धि के अगोचर भाव है ना, यानी हम उसको कैसे समझाएं, समझ नहीं जाए तो बुद्धि के गोचर हो जाते, परंतु फिर भी ऐसा लेना कि यानी सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अनंत अनुबंधी वाला है, सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे जीव के जो भाव है उसको ले दो।
परिणाम इतने अच्छे हैं कि जिसके कारण उसको
देव हो तो मनुष्य गति है, इसलिए देवों में भी घटित करना है, इसलिए मनुष्य गति भी लिया। और अनुव्रत महाव्रत योग्य उसके परिणाम है, अनुव्रत धारण करने के परिणाम, वो तो बुद्धि गोचर में नहीं लेने हैं उसके। बुद्धि गोचर अगर वो लेते हैं तो वो तो लेशा होती है, शुभ लेशा होती है। अबुद्धि गोचर में भी ये ले लेना, यानी जो अगोचर लेना इसको, आपके अगोचर।
और
समझ पूर्वक है, परंतु इतने मंदतर है कि अपने अगोचर भाव है, फिर भी अनंत अनुबंधी है, ये लेना है ना, अनंत अनुबंधी है, यानी मिथ्या दृष्टि तो नक्की है। अब वो मात्र सम्यक के योग्य उसके परिणाम चल रहे हैं कि अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, या अनुव्रति होने के है, क्या महाव्रति होने के पूर्वक वाले जो बुद्धि के अगोचर ऐसे भाव है उसको लेना यहाँ पर। जो बुद्धि गोचर और कार्य रहित होते हैं तो वहाँ तो छह लेशा बताई उन्होंने, यहाँ तो तीन शुभ लेशा लिए।
ये तो जबरदस्ती एक ही विधान समझने के लिए दे, वहाँ तो वो जीव जो भाव कर रहे हैं उसको भी पता नहीं है,
बुद्धि के अगोचर वाले
समझे कैसा, इसलिए ये अलग अलग बात देखे। अभी जो देखो ना, जो पंचम स्थान प्राप्त करने के लिए अनुव्रत पालन कर रहे हैं या महाव्रत पालन करने के लिए, उसके मंदिर में कुछ विचार झिंके होंगे, वो तो शुभ लेशाओं में होंगे, इसलिए उसने द्रव्य सम्यक्त्व यानी चौथा गुण स्थान, द्रव्य अनुव्रत यानी पांचवा गुण स्थान और महाव्रत यानी छठे सातवें गुण स्थान योग्य, जो कुछ परिणाम चलते होंगे वो भी जैसा अगोचर बुद्धि अगोचर, अब उसको उदाहरण तो हम जबरदस्ती दे रहे हैं क्योंकि जो कर रहा है उसको भी मालूम नहीं पड़ रहा।
अब कहते अरु वर्तमान विषय सर्व ही कषाय भाव दुख ही के कारण है, सर्व ही कौन से अनुव्रत महाव्रत योग्य भी वो कषाय में लिया उसको, मंद कषाय में ले लिया उसको, तो कहते वो दुख ही के कारण है। अनंत
ऐसा बोल सकते हैं कि इतने भावों की छनावट
अभी जो अभी हमने जो 20 प्ररूपणा देखी, 20 प्ररूपणा याद है, एक तो गुणस्थान है, फिर 14 मार्गणा है, उनमें ये भावों को लगाना है। अनंतानुबंधी कौन से गुणस्थानों में होगे, पहले और दूसरे। अब जीव समास यहाँ लिखा है कि नहीं हम बाद में देखेंगे, जीव समास में यानी जो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो कौन कौन से जीवों को होगा, एक इंद्रियों को होगा कि पंचेन्द्रियों के होगा, सभी को होगा, पर्याप्त पड़े सभी 14 जीव समास में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे देखो, मार्गणा अनंतानुबंधी कषाय गुणस्थान तो मिथ्यात्व और सासादन दो विषय ही है, इन्हें दो में ही ये अनंतानुबंधी कषाय पाई जाती है। अब मार्गणा स्थान में गति, कौन कौन सी गति में अनंतानुबंधी होगा आशा बेन? चारों गति में है। जाति, जाति का अर्थ क्या है मंदा जी? एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति। तो एकेंद्रीय के होता है क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी का, के पंचे ने सबके। काय में क्या लिखा? छह काय। ये छह काय कौन से हैं? हाँ, और त्रस्काय, पांच स्थावर काय और एक त्रस्काय। योग में यहाँ क्या लिखा? आहार द्विग बिना तेरा। ये तेरे के आपको नाम गिनाने हैं, प्रेरणा बिना।
तो मन के
चार,
वचन के
चार,
और काय के सात।
हाँ, कौन कौन से?
सात नहीं,
तो पंद्रह हो जाएगी।
उसमें आरोग्य जो के मीन्स औदारिक शरीर, औदारिक औदारिक शरीर, औदारिक
योग, औदारिक काय। जरूर रुको, जरूर रुको, शांति रखो। औदारिक काय,
औदारिक मिश्र
काय,
वैकृत
काय,
वैकृत
मिश्र काय,
और कार्बन काय।
बस आरोग्य को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? आहारक द्विक किसके होगा? जो आहारक शरीर बनाते हैं तब उनके आहारक का योग होता है, तो उनके तो अनंतानुबंधी है नहीं। तो बाकी मिथ्या दृष्टि जीव को जो वैक्रिय का औदारिक वगैरह जब है, मनोवचन का योग वगैरह, तब उनके होगा। तो ये अनंतानुबंधी कहाँ कहाँ होंगे? तो वो दो योग छोड़कर बाकी योग वालों के होगी। ये हम योग मार्गणा की अपेक्षा बात कर रहे थे। अब वेद मार्गणा में देखना है, नपुसक वेद वाले को होगा कि पुरुष वेद वाले को होगा कि स्त्री वेद वाले को होगा? तीनों वेद वालों को। कषाय इन्हें 25 क्यों लिखा उसमें? अनंतानुबंधी स्वयं उसमें आ गई ना, ठीक है। यानी उसके साथ अन्य भी सभी कषाय होती है। कुज्ञान यानी ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान मार्गणा में तीन कुज्ञान में होगा।
तो
नहीं, एक अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अन्य 24 आते हैं, इसलिए सभी 25 के 25 ले लिए उन्होंने। जहाँ अनंतानुबंधी वहाँ 25 कषाय है, ऐसा आप लिख सकते। असंयम यानी संयम मार्गणा की अपेक्षा, अनंतानुबंधी पहले दूसरे गुणस्थान में है तो वहाँ असंयम है। संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयम चौथे तक होता है, परंतु यहाँ तो पहले दूसरे में, उसको भी असंयम कहेंगे। अब दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, क्योंकि जब अवधि दर्शन कहेंगे तो वो सम्य दृष्टि के होता है। लेशा छहो है, क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में चौथे तक छहो लेशा होती है, तो यहाँ भी छह लेशा लेना। भव्य अभव्य दोनों में ही ये पाए जाएंगे। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा, सम्यक्त्व मार्गणा के भेद याद है? हाँ बोलो। हाँ, सम्यक्त्व यानी सम्यक दृष्टि के तीन भेद और ये नीचे के तीन, उसमें से किसमें किसमें होगा? मिथ्यात्व और सासादन वाले को। संगी के होगा कि असंगी के? तो दोनों के। आहारक में होगा कि अनाहारक? यह आहारक अनाहारक समझती है आशा बहन के? याद नहीं है ये, क्या हम बार बार ये मार्गणा पढ़ते हैं ना, हमको याद है। आहारक कहने क्या समझना और अनाहारक कहने क्या समझना, याद है कि नहीं है? इतना बोलो, फिर प्रेरणा बहन बोल देगी आपको। हाँ बोलो।
आहारक मीन्स भोग कर्म का ग्रहण होता है।
हाँ, ग्रहण होता है। हाँ,
और अनाहारक मीन्स विग्रह गति में।
हाँ, विग्रह गति में, यानी जो पहले दूसरे गुणस्थान में जब विग्रह गति में है, जब कारमाण का योग होता है, तो वहां भी अनंतानुबंधी हो गए कि नहीं हो गए? वहां पर भी है। हम तो कहते वहां कुछ नहीं है कषाय करने को, कारण बाह्य से कषाय होती है ऐसा माना हमने। तो वहां कषाय नहीं होगी तो बंद भी नहीं होगा, तो विग्रह गति में अबंध रहेगा, क्यों? ऐसा तो है नहीं। ऐसे अनंतानुबंधी कषाय भाव जानना, ये अनंतानुबंधी का विस्तार से वर्णन हो गया। अब अप्रत्याख्यान कषाय का सामान्य स्वरूप, जहाँ अनंत अनुबंधी का उदय है वहाँ अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन सभी है, परंतु यहाँ अनंतानुबंधी जब नहीं होगा तब प्रत्याख्यान का क्या कार्य है वो बताएंगे। जब अनंतानुबंधी के साथ ये है ना, तब इनका भी इतना तीव्र उदय होता है कि वो जो अनंतानुबंधी जैसा ही कार्य करता है। इसलिए इसको अप्रत्याख्यानावरण का अलग जब बताते हैं तो अनंतानुबंधी रहित वाले को, हाँ देखो अप्रत्याख्यान कषाय भाव निरूपीय है, अनंतानुबंधी रहित लिखा है देखो इन्होंने, अप्रत्याख्यानादि तीन कषाय का उदय होते हैं, यानी अब यहाँ तीन कषाय का उदय है परंतु उसमें भी अप्रत्याख्यान मुख्य है, तो उस जैसा अन्य तीन यानी अन्य दो भी वैसे ही है, यानी तीनों समान कार्य कर रहे हैं यहाँ पर अनंतानुबंधी नहीं है। यह जीव महापाप के कारण अन्याय रूप जो चंचल भाव ताकू छोड़ी विमलता को प्राप्त हुए है, क्योंकि यह अनंतानुबंधी रहित वाला है जीव, तीन कषाय चौकड़ी का उदय है, उसके तीन कषाय चल रहे हैं, उदय कहेंगे तो कर्म की बात आती है, तीन कषाय कहेंगे तो भाव की बात चल रही है। तो ये जीव कौन है? सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है, तीन कषाय उसका भाव चल रहे है। तो कहते क्या है? अन्याय रूप चंचल भाव इसके नहीं है, महापाप रूप अन्याय रूप भाव उसके नहीं हो गए, और उसको छोड़कर विमलता को प्राप्त हुए है, न्याय रूप निश्चल भाव विषय तिष्ठे है, तहां यह जीव सम्यक दृष्टि हो है, तहां सम्यक भाव का ग्रहण है, सर्व ही 13 प्रकार कषाय भाव न्याय रूप प्रवर्ते हैं। हाँ 13 कौन से है? क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, क्योंकि तीन कषायों का उदय है ना एक साथ, एक क्रोध इतना ही भाव कहेंगे, इसके क्रोध मान माया लोभ और ऐसा नहीं लेना, क्रोध मान माया लोभ लेना, 9, 4, 13 मैंने क्या कहा? क्रोध मान माया लोभ को लेना, यानी तीनों के क्रोध तीनों के मान इस तरह से। देखो सर्व ही 13 प्रकार कषाय भाव न्याय रूप प्रवर्ते, न्याय रूप शब्द डाला उसमें, अन्याय रूप कुछ नहीं है वह अनंतानुबंधी में भी उन्होंने तीन भेद किए, तीव्र मंद और मंदतर करके, और यहाँ तो सभी कषाय भाव न्याय रूप प्रवर्ते हैं। चारों कषायन के कार्य तो हो है, चार कषायन कौन से? क्रोध मान माया लोभ, परंतु न्याय रूप हो है, पांचों इंद्रिय के विषय तो सेवे है परंतु न्याय पूर्वक सेवे है, यानी मिथ्या दृष्टि भी इंद्रिय विषयों का सेवन चल रहा है और इसके भी है परंतु उसके विवेक है, न्याय से करता है, अन्याय से अनर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति उसके नहीं होगी। सो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित कार्य है, यानी उसके विवेक उसमें रहेगा हमेशा ही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित कार्य हो है।
अमेरिका में एक पंडित है सोपाल, वो कहते हैं कि तंत्र में लगता है कि जीव को किसी का कोई भी फल सकता है, न्याय पूर्वक सेवा चाहता है, वो लड़ाई खेलने जाएगा उसके ऊपर कोई आक्रमण करे तो
कषाय कार्य नि विषय यानी कषाय से होने वाले कार्यों में और विषय कार्य नि विषय अति आसक्त हो मूर्छा भाव को न प्राप्त हो, यानी अति आसक्त नहीं होता उसमें, कषाय सही कार्य है परंतु वो तो यथा योग्य हो गए परंतु अति उसमें तीव्रता नहीं होती, अयोग्य कारिणी को कदाचित भी न करे। राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध ऐसे जे कषाय कार्य वा विषय कार्य वा सप्त व्यसनादि जाके सर्वथा न होए है, इस कषाय के होते इतना सचेत रहे। यानी वो सप्त व्यसन वगैरह इसको बिल्कुल नहीं होगे, इतनी तो सचेतता है उसके। यानी विवेक पूर्वक कोई भी चलता है, यानी क्रोधादि नहीं होते, ऐसा नहीं है। तीन कषाय चौपड़ी है तो वहां वैसे क्रोध मान मायलो भी है, परंतु तो अन्याय रूप नहीं है और वो विवेक पूर्वक होगी। अति आसक्त होकर उसमें विवेक रहित तो उसका नहीं होगा कार्य। प्रथम ही अप्रत्याख्यान क्रोध भाव कहिए है। अपने राज्यादि न्यायकारिणी विषय क्रोध करे, अपनी आज्ञा मानने योग्य है और आज्ञा को न माने है ता पर या तीन पर क्रोध भी करे। यानी जिस पद के योग्य है वो, और उसके कुछ अभी घर में नौकर है या कोई बच्चे है और आज्ञा पालने जैसी और उसने नहीं पाली, तो क्रोध भी करेगा वो। अपने राज्यादि न्याय कार्य के बाधक, राज्यादि में सब लेना, राज्य लेना, कुटुम्ब लेना, जो या कोई अधिकारी बड़े पोस्ट पर है तो उसके योग्य जो कुछ उसका कार्य चलेगा न्यायपूर्वक, तो राज्यादि न्याय कार्य के बाधक व अपने धन प्राण संपदा वस्त्रादिक के बाधक है व अपना मान भंग करने वाले है व प्रजा के बाधक है। यानी किस पर क्रोध करता है वो तो हम एक एक को लेते हैं। राज्यादि न्याय कार्य के बाधक जो हो उस पर वो क्रोध कर सकता है, हो सकते है उसके। ये धन का बाधक है या प्राण के बाधक है, उसके प्राण पर कोई संकट आ गए या उसकी संपत्ति कोई हर ले, या वस्त्रादि के बाधक है या कोई उसके मान भंग करने वाले है, वह प्रजा के बाधक है, वह कुटुम्बादिक के बाधक है, वह गरीब दुखित भुखित मनुष्यनी के वह तीर्यंचादि के जीवनी के सतावनहारे है, तीन पर क्रोध करे। उसको क्रोध कब आएगा तो इतनी बातों में उसको क्रोध आ सकता है। यहाँ कोई अन्याय पूर्वक तो है ही नहीं ना, अनीति है। वह धर्म बाधक चतुर्विध संग को दुख देनहारे, ये चतुर्विध संग समझते है? हाँ हाँ, बरोबर। मुनि आरिका श्रावक श्राविका उसको चतुर्विध संघ कहते हैं। वह मिथ्या धर्म के पोषक, वह सत्य धर्म के उत्थापक, तीन पर क्रोध करे इत्यादि योग्य स्थानकों पर क्रोध भाव करे है, सो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित करे है, क्रोध के वशीभूत न हुए है। क्यों नहीं होता क्रोध के वशीभूत अश्विन भाई? अनंत अनुमति
नहीं है ना।
और उसके कैसे अभी उसको तो उसको स्व की प्रतीति है ना, तो उठने वाले क्रोध को भी भिन्न जान रहा है अपने से, तो उसके वशीभूत नहीं हो रहा। अनंत अनुबंधी क्रोध सहित उसका एकत्व पड़ा है और इसके साथ वो भले मंद मंदतर हो तो भी उसके साथ एकत्व है, और यहाँ इसके वो उसके वशीभूत नहीं है। कार्य के अंत विषय ही शांत हुए हैं, यानी कार्य के अंत विषय शांत हुए ने, किसी ने मान भंग किया, उसको गुस्सा किया, उसको कुछ दंड देना है, बस शांत है उसके प्रति, वो तो चलता नहीं है। अनंतानुबंधी कैसा हमने देखा, संख्यात असंख्यात अनंत भवन तक चलता रहेगा। या का वासना काल उत्कृष्ट छह मास पर, ये उत्कृष्ट की बात है, छह मास टिकेगा ये बात नहीं, उत्कृष्ट छह मास है, पीछे उपशांत ही हुए है, यानी उससे अधिक तो टिकेगा ही नहीं। हो सकता है जल्दी हो जाए, घंटे दो घंटे में, दो दिन में, चार दिन में, पंद्रह दिन में, परंतु ये छह महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। कषाय की बात चल, वासना काल है उसका। ये चौथे वाला
तो
का उदय है,
चौथे की बात। सॉरी,
नहीं, परंतु उसके लिए वो अंदाज निकालना भी योग्य नहीं है, इसलिए कि उसको ऐसे भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहे। उसके क्रोधादि जो होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि अंतरंग में गया इसलिए वो क्रोध मिट गया। ये ऐसे ही मंद, ऐसे ही उस जाति के अनंत अनुबंधी की जाति के उत्पन्न ही नहीं हुए, और ये अप्रत्याख्यान जाति के उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है, और ये ऐसे है कि इस ज्यादा टिकते ही नहीं, वो बस मिट जाते हैं। यानी वासना काल से वो, यानी जो शुद्धोपयोग वाली जो बात घटित करते, वो घटित नहीं होती है।
यानी वो इतना तीव्र प्रकार का क्रोध या अन्य त्वचा
उसके उठते ही नहीं, तो वो खत्म ही हो जाते हैं, उसका मिट ही जाता है वो। उसको मिटने के लिए आत्मानुभव करेंगे तो मिटेगा, ऐसा नहीं है उसका। ये बात आत्मा अनुभव में क्या है, वो तो बस उसके तो आनंद की उस अनुभूति है बार बार, और उसकी दृढ़ता होती चली, उसके उसमें अन्य बात नहीं है। कर्णानुयोग में तो तीन करण की बात आती है, तो बहुत विशुद्धि होती है तो तीन करण हो जाते हैं, और समय दृष्टि एक करण हो जाएगा तो विषय योजना हो जाएगी। वैसे तो बिना करण के यथा योग्य स्वस्थान में विशुद्धि होनी उतनी हो सकती है उसकी। अब उसके लिए ऐसा कहीं रूल नहीं बताया, लंबे काल इतना ही बताया शास्त्र में। केवल मुनियों के लिए अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त की कन, वो तो बात बताई सब जगह, क्योंकि उनका गुणस्थान ही छठा सा तो अलग अलग है। पांचवें गुणस्थान के लिए शीघ्र शीघ्र होता, चौथे के लिए बहुत देरी से होता, इतनी बात आती है। हम कह सकते हैं 6 महीने 15 दिन कुछ भी, परंतु ऐसा कहीं शास्त्र में पिन पॉइंट हम उसको रील नहीं, रूल कहीं बताए नहीं है। हाँ, वासना काल की बात आती है जरूर। अब अप्रत्याख्यान मान कषाय भाव कहिए, अपने पद योग्य मान करे है, राज विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध मान नहीं करे है, सोभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित करे है। भले द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित हो रहे है उसको, लोक विरुद्ध वगैरह नहीं है, परंतु तो ऐसा कहता माना होगा ना कि किया ऐसा ही करना चाहिए, कि उस कषाय के बारे में हुआ वो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं गुना अच्छा लगेगा, क्या ना हो रहा है उसका स्वामित्व नहीं है, परंतु जितने कषाय हो रहे हैं वो तो उसको है ये समझता है कि नहीं समझता। बहुरी देव गुरु धर्मादि के निकट अष्ट प्रकार मदन नहीं करे है। ये 8 प्रकार के मद याद है क्या अश्विन भाई?
हाँ,
जाति
और बुद्धि तप ज्ञान
ऐश्वर्य
ऐश्वर्य और गुण,
ये ऐसे 8 प्रकार के मद इनके नहीं होते। समय दृष्टि के तो होते ही नहीं है, क्यों नहीं होते हैं? जैसे जाति जाति समझते हैं, कुल और जाति में क्या अंतर है? अमर तप कुल यानी क्या और जाति यानी क्या?
कुल फादर का,
फादर का पिताजी की ओर का जो है उसको कुल कहेंगे, और हाँ मौसाड़ू, हाँ वो क्या कहेंगे? जाति। तो वो हमारे वो राजा थे, हमारे वो दीवान थे, ऐसे उसका मत वो नहीं, क्योंकि ये सब बाह्य चीजें है ना, रूप है या ऐश्वर्य है या संपत्ति है धन है, उसका मत किसको होगा? ये तो बाह्य संयोगों से अपने को थोड़े बड़ा मानेगा, वो तो अपने को ज्ञान में जो अनुभव कर रहा है उसके इसमें कुछ मद होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए कहते 8 प्रकार का मद ना ही करे भाषा है, उसको ऐसे मद होता ही नहीं है, परंतु यहाँ समझाते समय ना ही करे ऐसा कहेंगे। चतुर्विध संगसों मद ना ही करे है, तहां निर्मद होए है। निर्मद निकल गया है मद, वो निर्मद कहेंगे उसको। बहुरी अपने पद के थामने विषय मान करे है, तहां प्राण जाता भी मान नहीं तजे है। यानी पद के थामने नहीं, पद संभालने के लिए, जैसे राजा है या कुछ उसके योग्य वहां परंतु ऐसा नहीं हुआ, अनंतानुबंधी मान जैसा नहीं मान लिया। बिना प्रयोजन किसी का मान भंग नहीं करे है, किसी
से ऐसे बताया ना कि अपने पद के थामने से मान करे और प्राण जाता भी मान नहीं तजे।
हाँ, पर अपने पद योग्य, अपने पद योग्य, जो राजा है तो राजा के योग्य उसके वो जो कुछ चल रहा है, परंतु माने ने इसे मद या घमंड नहीं है उसके। और बिना प्रयोजन किसी का मान भंग भी नहीं करे, किसी सु बिना प्रयोजन अदेखस का, अदेखस यानी ईर्षा भाव नहीं रखे। इत्यादि अप्रत्याख्यान मान कषाय भाव जानना, अप्रत्याख्यान माया कषाय भाव कहिए। अपने राज्यादि न्याय कार्य की सिद्धि के अर्थी माया करे, न्याय की बात है। जैसे शत्रु के साथ लड़ना है तो जो उसमें जो कुछ युद्ध नीति वगैरह होती है तो न्याय के लिए वो माया करे है। दूसरे के ठिगने के अर्थी माया नहीं करे, यानी किसी के पैसा लूटना है या जो अनंतानुबंधी मायाचारी तो कुछ भी करेगा, तो ऐसे उसके मायाचारी नहीं होती। अपना धन संपदा प्राणादि रखने के अर्थी माया करे, यानी कोई धन लूटता हो तो वो यानी उसको कहीं छिपा के रखेगा, वैसी माया होगी इसके। प्राणादि रखने के अर्थी माया करे है, वह अपने धर्म रखने के अर्थी माया करे है। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित करे है। जैसे वो अकलंक की वगैरह बात आती ना, अकलंक निकलंक की बात अपने सुनी कि नहीं, तो वहां किसी अन्य मति के यहाँ वो पढ़ने गए थे तो बोर्ड पर कुछ गलत था, उसको सीधा करे सम्यक शब्द डाल के उन्होंने लिख दिया, तो वो समझ गया कि यहाँ कोई जैनी है, तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति रखी और इसको लांग कर जाओ ऐसा बताया। तो सब विद्यार्थी गए ये कैसे लांगे, तो इन्होंने क्या किया वो उसके ऊपर वस्त्र का धागा डाला, तो ये परिग्रह सहित वाले हो गए, फिर उसको लांगा। ये मायाचारी की उन्होंने, तो धर्म के अर्थी माया करे, धर्म रखने के अर्थी। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित करे, यानी वहां धर्म के रक्षण के लिए कहो या अन्य, यहाँ अपनी ऐसी मायाचारी नहीं करनी कि हमें तो इंद्रिय विषयों की चाह है और हम मायाचारी करें, ऐसी बात नहीं चल रही है। पराया धन प्राण स्त्री संपदा आदि हरने के अर्थी माया नहीं करे, ख्याल में नहीं, धर्म के रक्षण के लिए कहो या अपना धन संपदा प्राण के रक्षण के लिए वो मायाचारी कर सकता है, परंतु दूसरे का धन प्राण वगैरह हरने के लिए नहीं, इत्यादि माया करे है। सो प्रत्याख्यान माया कषाय भाव जानना, अब अप्रत्याख्यान लोक कषाय भाव कहिए। अपने राज्यादि न्याय कार्यनि विषय लोक करे है, तहां भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित करे है, अन्याय लोभ नहीं करे है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जो होता है तो क्षेत्र में क्या
यानी उस क्षेत्र के अनुकूल ऐसा कुछ होगा, उस क्षेत्र में कुछ चीजें नहीं मिलती और वहां लोग करें ऐसी भी बात नहीं है लेनी उसमें। जैसे हम देखें अभी केवल क्षेत्र की बात छोड़ दो, राज्यादि न्यायकारिणी विषय लोग करें, अभी जो चक्रवर्ती छह खंड राज्य जीतता है तो उसे छह खंड जीतने का वहां लोग है कि नहीं है, फिर भी अन्याय से जीतने का नहीं है, न्याय पूर्वक अन्याय लोभ नहीं करे लिखा ना। अभी उसमें भी सामान्य राजा का ले लो, उसको कितने तक, वो कितने क्षेत्र तक क्या है, उसकी तो मर्यादा होगी ना, उसकी कुछ ना कुछ। आप कुछ कहेंगे क्षेत्र में और कुछ लेना है? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उसको जो कहेंगे ना, उसके योग्य जो कुछ होगा उस परिस्थिति में, उस काल में, क्षेत्र में, वो तो भरत में, गांव में, शहरों में, वैसा ले लेना उसको। जिन कार्य विषय महापाप उपजे ऐसा न्याय लोभ भी नहीं करे। क्या कहते हैं? न्याय लोभ है, परंतु जहां महापाप उपजता हो ऐसा भी वो नहीं करेगा। अपने यश होने का वा अपने धर्म वा धन का लोभ करे है, इत्यादि लोभ करे है। स्वप्रत्याख्यान लोभ कषाय भाव जानना, यानी वो पराया धन का ऐसा लालुची लालची होकर वो हरण करने का वगैरह ऐसा कार्य वो नहीं करेगा। यानी महापाप जिसमें होता है ऐसा नहीं करेगा। चोरी है या किसी का हत्या करनी है या बहुत जिसको कि दूसरे को ठगने रूप जो कोई होगा ऐसा कार्य तो नहीं करेगा। और जहां अपने राजादि कार्यनी विषय मुख्य है तीन प्रति व अपने स्त्रीजन आदि परिवार विषय हास्य कषाय करे है। अभी यहाँ नौ कषाय को ले लिया, पहले अनंत अनुबंधी के साथ नौ कषाय को लिए, अब यहाँ प्रत्याख्यान के साथ ले रहे। वह अपने हास्य योग्य पुरुष ने प्रति हास्य करे है, सो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता देखी करे है। यानी उसमें भी विवेक होगा उसको कहाँ क्या है। जैसे मंदिर में बैठा है वही, वहां तो ऐसे कि अपने परिवार जनों के साथ भी हास्य कषाय नहीं करेगा वो, ये इसको कहेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव योग्यता से। इत्यादि कषाय सो प्रत्याख्यान हास्य कषाय भाव जानना। बहुरी अपने स्त्री पुत्रादिकनी विषय व अपने योग्य पांच इंद्रियनी के विषय तीन विषय व अपने योग्य विषय सामग्री व राजादि सामग्री तीन विषय रति करे है व दान पूजनादि धर्म अंगनी विषय रति भाव करे है, सो भी अति आसक्त तो हो नाही करे। किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता सहित रति करे है इत्यादि अप्रत्याख्यान रति कषाय भाव जानना। क्योंकि उसमें भी वो मंदता तो जरूर होगी ना, प्रत्याख्यान रति भाव से ये, सॉरी अनंतानुबंधी रति भाव से ये तो मंदता की हो गई। अब अरति किसके प्रति होगी? उसके दुर्जन पापी पुरुषनी विषय, राजा के बाधक, प्रजा के बाधक, धर्म के बाधक, पराई चुगली खानहारे, पराई निंदा व अपनी प्रशंसा करणहारे, मिथ्या मार्ग के पोषक, अन्याय के प्रवर्तक इत्यादि जीवनी विषय अरति करे। अन्याय के विषय 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 यानी अन्याय के जो विषय है उनमें व अन्याय कषाय सामग्री व विषय सामग्री तीन विषय यानी अन्याय से जो उत्पन्न होती है ऐसे ले लेना व सप्त व्यसनादि विषय व सदोष व अक्रिया करी निपजो भोजनादि खान पान सामग्री तीन विषय व मिथ्या मार्ग विषय इत्यादि विषय अरति भाव करे है। ऐसा अप्रत्याख्यान अरति कषाय भाव जानना, यानी उसको अरति भी अरति समझते हैं ना, उसके प्रति नफरत का द्वेष रूप भाव जो है। अपने मानखंडादि विषय वा न्याय मार्ग तय उल्लंघन भया हो वा धर्म का उल्लंघन भया हो तहां शोक करे है। यानी उसको जैसे पश्चाताप रूप भी शोक होता है ना, अरे रे ये ऐसा अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे से न्याय मार्ग का उल्लंघन हुआ, धर्म का उल्लंघन हुआ। इष्ट पुत्र मित्र स्त्री आदि के वियोग विषय भी मिथ्या तो भाव रहित किंचित काल शोक करे। यहाँ पर भी वो बात आती है ना, मैं छह महीना वहाँ शोक किया, तो छह महीना क्यों किया, उसका वासना काल है प्रत्याख्यान का। तो मिथ्या तो भाव रहित वाला शोक है ये। साधर्मी गुरुजन के मरण विषय वा वियोग विषय शोक करे, अपने धन संपदादि राजादि विभूति वा अपने प्राण के जाता भी शोकवंत नाही होए है इत्यादि अप्रत्याख्यान शोक कषाय भाव जानना। बहुरी, न्याय के उल्लंघन का तथा धर्म के उल्लंघन का है भय जिसको, अभी भय की बात चल रही है कि न्याय के उल्लंघन का धर्म के उल्लंघन का है भय जिसको, वह पापकारी विषय प्रवर्तन का वह चतुर्गति संसार विषय भ्रमण का है भय जाकू, और सप्त भय करी वर्जित होए इस भव का नाही है भय जिनके। क्या कहते, किसका भय है और किसका नहीं है वो बात बताए। किसका है कि न्याय मार्ग उल्लंघन का उसको डर है, यानी न्याय से चलता है। धर्म के उल्लंघन का भय है, भय है ना उसके सावधानी पूर्वक वो अपने से कोई धर्म का उल्लंघन तो नहीं होता है ना, इस बात के लिए चौंकना रहेगा। पाप कार्य विषय प्रवर्तन का भय है ना वो डर है, यानी अपने से कोई पाप कार्य नहीं होता है ना, इस बात में सावधान है। चतुर्गति संसार के भ्रमण का भय है, उसके भय बिना तो वो इस मार्ग पर चलता नहीं रहेगा, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है, तत्व ज्ञान का कुछ अता पता नहीं है, और बिल्कुल निर्भय निडर होकर सभी स्वच्छंद मार्ग चलता है उसका, उसको कोई भय नहीं ना, वो मानता ही नहीं इस बात को। तो जिसको संसार में परिभ्रमण का भय है वही इस मार्ग की ओर और ढलेगा। अब इसको किसका भय नहीं है तो कहते सप्त भयों से रहित है ना, ये समय दृष्टि है, तो कहते इस भव का भय नहीं है। पर भव संबंधी भी भय नहीं है, क्यों कि यहाँ देव में जाएगा कि नरक में जाएगा, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या करूंगा, मेरे कुछ संपत्ति मिलेगी कि नहीं, मेरे सब यहाँ सारे स्वजन यहीं रह जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, ऐसा कोई उसको भय नहीं रहता है। बहुरी, मरण का भी भय नहीं है, रोग का भी भय नहीं है, क्योंकि उसके तो उसकी तो अपनी प्रतीति हुई है, अपने भिन्न अनुभव चल रहा है, और भेद ज्ञान तो और बढ़ता है उसका। मरण सामने हो, रोग चल रहा है, फिर भी उसका भेद ज्ञान के बल से वो अपना भिन्न अनुभव वो तो करता रहता है, तो रोग का भी भय नहीं है। ना ही है रक्षक कोई हमारा, सो भय भी नहीं है। देखो यहाँ किस किस का लिया, इस भव का भय, सप्त भयों के नाम लिखे यहाँ पर, सप्त भय करी वर्जित है, यानी सप्त भयों से रहते। कौन कौन से सात भय देखो उसमें नंबर डालना, इस भव का, इस भव एक शब्द करना और पर भव भी एक शब्द करना, उसको जोड़ देना। पर भव का नहीं, मरण का नहीं है, मरण का भी भय नहीं है, यहाँ रोग लिखा है, वैसे वेदना लिखते हैं, रोग का भी नहीं है। हमारा कोई रक्षक नहीं है, उसको कहेंगे अरक्षा भय, रक्षा भय भी नहीं है उसके। धन संपदा के चोर का भी भय नहीं है, अगुप्ति, एक्चुअली अपनी कोई प्राइवेट चीज कोई जान ले वो अगुप्ति में आती है। ये धन संपदा के चोर वो अरक्षा में ही हो जाएगा वैसे। और अकस्मात भी भय ना ही, देखो इसको कैसे याद रखना, इस लोक का प्रभाव, यानी ये इस भव प्रभाव या यह लोक पर लोक दोगे, मरण और वेदना जोड़ी जोड़ी, ये तीन है वो अ वाले, अरक्षा अगुप्ति और अकस्मात, ये सात भय नहीं होते। अभी शोक भय, अब जुगुप्सा की बात है, जिसको हम ग्लानि कहते हैं, परधन परस्त्री वहाँ अन्याय के कषाय वहाँ अन्याय के विषय कारिणी तय है अहोठा भाव जिनके यानी उसके प्रति ग्लानी भाव है। पाप कारिणी तय वहाँ पापी पुरुष नितय मिथ्यात्व के पोषण हारे तीन विषय धारे है जुगुप्सा वहाँ पाप प्रवृत्ति विषय वहाँ पाप प्रवृत्ति के प्रवर्तन हारे विषय वह चतुर्गति संसार विषय अहोठा भाव को धारे है। अहोठा यानी वो जुगुप्सा भाव यानी जिसको अनगमा भाव जिसके वो रुचता नहीं उसको ऐसा बहुरी ये उसके प्रति उसको ग्लानी कहूं बहुरी सदोष आहार वहाँ अक्रिया करी जो निपजा भोजन ता विषय भी ग्लानी करे है इत्यादि विषय भी ग्लानी करे है। ऐसा जुगुप्सा का अप्रत्याख्यान कषाय भाव जानना अब यही रुकेंगे हम जावानी के ज्ञान पे सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतव।